मजबूती से मेरा हाथ पकड़ना, भीड़ ज्यादा है, छोड़ना नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब मैं चल भी रहा था, इधर उधर भी देख रहा था, इधर उधर की चीजें देखने में मैं ऐसा महव हुआ कि हाथ छूट ही गया। और उसके बाद बहुत देर वालिद मुझे ढूंढते रहे, मैं वालिद साहब को ढूंढता रहा। काफी देर के बाद और परेशानी उठाने के बाद वालिद साहब ने मुझे ढूंढ लिया। जब उन्होंने मुझे ढूंढा तो मुझे कहा कि तुम्हें मैंने कहा था कि पकड़े रखना, तुमने ये कपड़ा क्यों छोड़ा? तो मैंने फिर उनको कहा कि मैं किसी चीज को देखने में मशगूल हो गया, तवज्जो नहीं रही। तो कहने लगे कि वालिद ने मेरे कान खींचे और कान खींच कर कहा कि देखो बच्चे, जिस तरह तुमने अपने बड़े का हाथ मजबूती से न पकड़ा तो दुनिया के मेले में गुम हो गए, इसी तरह तुम बड़े होकर अगर अपने बड़ों का हाथ मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो फिर दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। कहने लगे कि बचपन की हुई वालिद की यह बात मुझे आज भी याद आती है कि वाकई जो अपने बड़ों का साथ छोड़ बैठता है वो फिर दुनिया के जिलमिलाहट के अंदर गुम ही हो जाया करता है। फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, अपने वालिद के साथ तहज्जुद में उठ जाया करता था। एक रात मैंने तहज्जुद पढ़ी तो घर के कुछ लोग सोए हुए थे, तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू देखो ये लोग सोए पड़े हैं, ये उठ के पढ़ते ही नहीं तहज्जुद। तो वालिद ने कहा कि बेटा तुम अगर सोए रहते तो ज्यादा बेहतर था, इसलिए कि अब जो तुमने ये बात की ये गीबत में दाखिल है, उनको सोने पर इतना गुनाह नहीं होगा जितना तुम्हें गीबत के करने पर गुनाह हुआ। तो देखिए किस तरह बच्चा बातें कर रहा है और अकलमंद बाप उस बच्चे को साथ साथ तालीम भी दे रहा है, उसकी तरबियत भी कर रहा है। ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े उस्ताद के शागिर्द बने जिनका नाम था इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तलबीस इबलीस लिखी। तो फरमाते हैं कि मैं शाफई मजहब पे था और उस्ताद मुझे उसके मुताबिक तालीम दे रहा था। एक दिन उस्ताद ने मुझे पढ़ाया कि रोजे में मिसवाक नहीं करनी चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रोजे में मिसवाक का करना जायज है, मगर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इसमें बहुत एहतियात बरतते हैं। वो फरमाते हैं कि नहीं, जब अल्लाह को रोजेदार की महक ही अच्छी लगती है तो मिसवाक क्या करनी। बहरहाल उनका अपना नुक्ता नजर। कहने लगे कि मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने घर आकर अपने वालिद को कहा कि अबू रोजे में मिसवाक नहीं करनी होती। जब मैंने ये बताया तो मेरे वालिद ने कहा कि बेटे तुम रोजे में मिसवाक न करने की तो इतनी एहतियात कर रहे हो, और अभी जो तुमने बात की तो वो गीबत थी और तुमने अपना भाई मुर्दा भाई का गोया गोश्त खा लिया, तो क्या रोजे में ये गोश्त खाना तुम्हारे लिए जायज था? कहने लगे तब मुझे समझ में आई कि वाकई रोजे की हालत में गीबत से कितना बचना चाहिए। तो ये मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आपको ये पता रहे कि जो अहले इल्म होते हैं, मर्द हों या औरतें हों, वो भी अपने घर के बच्चों से बातें करती हैं, मगर वो बात बात के मुताबिक उन बच्चों की इसलाह भी करती चली जाती हैं, उनको समझाती भी चली जाती हैं, और इसी तरह बच्चे माशाल्लाह पलते भी रहते हैं और साथ संवरते भी रहते हैं। और जिन माओं को इल्म नहीं होता, या तो वो गलतियों पे भी दरगुजर कर देंगी, प्यार कर लेंगी, और या फिर इंसान को छोटी छोटी बात पर जायज सवाल के ऊपर भी डांट कर चुप करवा लेंगी। ये दोनों चीजें गलत होती हैं। बच्चे कच्चे होते हैं, ऐसे काम करते हैं, हरकतें करते हैं कि जो नापसंदीदा होती हैं, मगर उनको तरीके से समझाना चाहिए और उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये शरारतें भी करेंगे और कुछ और जो है इस किस्म की काम भी करेंगे। मौलाना आजाद फरमाते हैं, मैं छोटा सा था तो घर में वालिद साहब का अमामा पड़ा होता था, तो मैं क्या करता कि अपनी बहनों को इकट्ठा कर लेता और अपने सर पे अपने वालिद का अमामा रखता और बड़ी शान से अकड़ के चलता, और मैं बहनों को कहता हटो रास्ता दो, इसलिए कि दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं। इसलिए कि बचपन में मैंने सुना हुआ था कि दिल्ली में कोई बड़े मौलाना रहते हैं। तो फरमाते हैं कि मैं अपनी बहनों के साथ गोया ये खेल खेलता था कि सर पे अमामा रख के मैं चलता था और फिर कहता था कि हटो देखो दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं, और फिर मैं अपनी बहनों को कहता कि तुम लोग मेरा इस्तकबाल करो और इस्तकबाल में तुम नारे लगाओ। अब बहनें कहती कि हम क्यों नारे लगाएं, इसलिए कि मौलाना जो आ रहे हैं। तो वो कहती कि नहीं, मौलाना को इस्तकबाल के लिए तो हजारों लोग होते हैं, हम तो दो तीन हैं। तो कहते कि नहीं, तुम यूं ही समझ लो कि तुम हजारों हो और मेरा इस्तकबाल कर रहे हो, लिहाजा तुम नारे लगाओ। अब छोटा सा बच्चा देखो अपनी बहनों के साथ किस तरह ये बात खेल रहा है। इनकी एक बड़ी बहन थी, एक मर्तबा उसने बचपन में इनको कोई काम कहा, इन्होंने ना किया, जिद कर गए, तो बड़ी बहन खफा हुई और उसने अपने वालिद को कहा कि अब्बू ये हमारे बच्चे तो बिल्कुल सड़े हुए अंडों की तरह हैं। तो कहने लगे कि जब मैंने सुना ना कि बहन ने कहा कि ये तो सड़े हुए अंडों की तरह है, तो मैंने उसी वक्त अपने मुंह से चूं चूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी और कहा कि देखो अगर अंडे सड़े हुए होते तो उसमें से ये मुर्गी के बच्चे कैसे निकलते। अब छोटा बच्चा है, देखो वो अपनी बहन की बात पे किस तरह रिएक्ट कर रहा है। तो बच्चे खेलते भी हैं तो फिर अपने घर के माहौल के मुताबिक ही बातें खेलते हैं, या अपने बड़ों को जो करते देखते हैं फिर वही उनका खेल बन जाता है। मौलाना तलहा दामत बरकातहुम खुद एक मतलबा फरमाने लगे कि मैं छोटा सा था, गली में बैठा हुआ, और मैं एक बच्चे को बैत कर रहा था इसलिए कि मैंने अपने वालिद को बैत करते देखा था। अब मैं छोटा जो है वो बच्चे को बैत के कलिमात पढ़ा रहा था, उसके हाथ अपने हाथ में लिए हुए थे, अल्लाह की शान के इधर से हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। उन्होंने मुझे आकर देखा तो चूंकि शफकत बहुत थी, शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक था, और मुझे देखा तो वो मुझे कहने लगे कि साहबजादे साहब हमें भी बैत कर लो। कहने लगे कि मैंने कहा कि आए बैठ जाएं, तो मुझे क्या पता था कि ये बड़े मियाँ कौन है। तो मैंने कहा कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह के हाथ अपने हाथ में पकड़े और मैंने कुछ कलिमात पढ़ के कहा अच्छा मैंने आपको भी बैत कर लिया। तो अब देखिए बच्चा है लेकिन वो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को बैत कर रहा है। बच्चे इसी तरह के काम करते हैं तो उनसे ऐसी बातें एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए। हाँ, कई मर्तबा वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि बंदे को बात समझ नहीं आती, इसलिए कि कभी वो सहम जाते हैं, कभी वो खौफजदा हो जाते हैं, कभी वो हिम्मत कर जाते हैं। चुनाचे मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में बताया करते थे कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे घर में कुरान मजीद शुरू करने की तकरीब हुई। उस जमाने में इसको रस्म बिस्मिल्ला कहा जाता था और ये दो रस्में बड़े शान से मनाई जाती थीं। एक रस्म बिस्मिल्ला कुरान शुरू करवाने से पहले और एक रस्म आमीन जब कुरान खत्म हुआ करता था। उस जमाने की ये तकरीबात हुआ करती थी। कहने लगी कि अम्मी ने मुझे नहलाया, फिर बहन ने मुझे अच्छे कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, खूब मुझे सजा दिया गया, घर के अंदर रिश्तेदारों को बुलाया गया, सब ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मिठाई का इंतजाम किया हुआ, खुशबाश हैं, हत्ता के एक कारी साहब को भी बुला लिया गया जिन्होंने आकर मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ानी थी। अब जब सारे लोग खुशियों के साथ